तो अब आप देखें कि ये जो आयात है 243 से शुरू होती हैं कि अलम तरा इलल्लज़ीन खरजू मिन दियारहिम वहुम उलूफुन हज़र अल मौत। तुमने उन लोगों के हाल पर भी गौर किया जो मौत के डर से अपना घर बार छोड़कर निकले थे और हजारों की तादाद में थे। तो अब यहाँ पर बनी इसराइल का एक वाकया जो है उसका हवाला दिया जा रहा है, जो बड़ी तादाद में थे बनी इसराइल के लोग, लेकिन दुश्मन के डर से अपना वतन छोड़कर भाग निकले। तो अब क्या है कि ये वाकया बताने का मकसद क्या है कि मुसलमानों को भी तंबीह की जा रही है कि तुम मक्का से मदीना की तरफ निकले हो, जो तुमने हिजरत की है दुश्मन के डर से नहीं की, दुश्मन से फरार नहीं तुमने किया बल्कि कुफर और कुफर के फितने से फरार किया। यानी असल मुसलमानों का भागने का या मक्का को छोड़ने का असल मकसद क्या था? जाने बचाना नहीं बल्कि अल्लाह के दीन की नुसरत और अल्लाह की राह में मुत्तहिद होकर जिद्दोजहद करना और अल्लाह की नुसरत की तलब। तो ये उनका एक वाकया बताया जा रहा है और साथ ही मुसलमानों को जिहाद पर, इंफाक पर जो है वो उभारा जा रहा है, क्योंकि अल्लाह के दीन के रास्ते में जिहाद की और माली कुर्बानियां जो हैं इनकी जरूरत पड़ती ही है। तो मुसलमानों को इसके लिए उभारा भी जा रहा है और उनकी कमजोरियों से बचने की, जो बनी इसराइल की कमजोरियां थी उनसे बचने की जो है वो हदायत भी की जा रही है कि बनी इसराइल के लोग मौत से डरते थे, जिहाद से डरते थे, माल से मोहब्बत करते थे, इसीलिए उनको जवाल आया। तो अब कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान जो मक्का से हिजरत करके गए और मदीना गए हुए उनको तकरीबन 1.5 साल हुआ था, तो जब तक मक्का में थे कहते थे जिहाद की इजाजत दी जाए, मुतालबा करते थे, तो अल्लाह ताला ने उनको कहा था सबर करो। अब जब मदीना गए तो अब ये कि जब उनको लड़ाई का हुक्म दे दिया गया तो अब कुछ लोग थे जो कसमसा रहे थे, हिचकिचा रहे थे। तो अब यहाँ पर जो है बनी इसराइल की तारीख के दो अहम वाकयात जो है इससे इबरत दिलाई गई है मुसलमानों को कि अलम तरा, क्या तुमने देखा, क्या तुमने गौर किया। तो एक सवालिया अंदाज है, जब सवालिया अंदाज होता है ना तो लोगों से पूछना कि क्या तुम्हें कुछ पता है, तो अगला कहता है कि पता तो नहीं कि कैसे है। तो क्या है कि वो इल्म हासिल करने पर आमादा होता है, वो कुछ सोचने समझने पर मजबूर होता है, उसके अंदर एक अमादगी पाई जाती है कि हाँ फिर बताएं कि क्या है ना। तो वही बात है कि क्या तुमने उन लोगों के हाल पर भी कुछ गौर किया जो मौत के डर से अपने घर बार छोड़कर निकले थे। तो उनको क्या डर था? मौत का, और वो हजारों की तादाद में थे। तो इस सिलसिले में जो रवायात से पता चलता है वो ये है कि बाज लोग ये कहते हैं कि बनी इसराइल के कुछ लोग किसी शहर में रहते थे, वहां ताऊन की वबा फैल गई, तो ये ताऊन की वबा का शिकार होकर मर जाने के खतरे से कि कहीं मर ना जाएं तो अपना बोरिया बिस्तरा लपेट कर हजारों की तादाद में शहर से निकल खड़े हुए और वो समझे कि इस तरह मौत से बच जाएंगे, लेकिन अभी मंजिल तक पहुंच नहीं पाए थे कि रास्ते में मौत ने उनको ले लिया और वो सब के सब मर गए। यानी बाज लोगों का ये ख्याल है कि हो सकता है कि चूंकि उनको जरासीम ताऊन के लग चुके थे तो उन्हीं जरासीमों की वजह से वो मर गए हों, और या फिर ये कि उन्होंने चूंकि बुजदिली दिखाई तो इस वजह से मर गए हों। तो बाज लोग कहते हैं कि वो ताऊन की बीमारी के डर से निकल गए, भाग गए, और बाज लोग ये कहते हैं कि वैसे ही जो है वो जैसे जिहाद करना, मेहनत करना, इससे वो डर कर जो थे ना उन्होंने अपनी बस्ती को छोड़ दिया था। तो उलूफ का लफ्ज बता रहा है कि वो हजारों की तादाद में थे, क्योंकि जो है वो सूरत माईदा में आप इसकी मजीद तफसील पढ़ेंगी कि उनको जब कहा गया था कि कनानियों को फिलिस्तीन के इलाके से निकाल दो तो वो कहते थे कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जंग करेंगे। उन्होंने यही कहा था ना मूसा अलैहिस्सलाम को, फजहब अंता व रब्बू का फकातिला हा हुना कायदून, क्या मूसा अलैहिस्सलाम आप और आपका रब जाए और जाकर लड़ाई करें, हम तो यही बैठे हैं। यानी वो जिहाद भी नहीं करना चाहते थे, तो ये वजह भी हो सकती है। अब अल्लाह ताला ने क्या कहा, فقال لهم الله موتوا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب مر جاؤ، یعنی موت کے ڈر سے بھاگے تھے اور موت آگے کھڑی تھی. تو ثم احیاہم، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندگی بخشی. تو اس میں ایک زندگی تو یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک نسل صحرا میں ختم ہوگی اور دوسری نسل جو ہے وہ پھر زندہ ہوئی، اور دوسری یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو ان کی اخلاقی موت تھی، جو ان کے ضمیر کی موت تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس سے ان کو نکال کر جو ہے وہ دوبارہ ان کو زندگی عطا کر دی. اچھا، یہاں ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کہیں کوئی وبائی مرض ہے، طاعون وغیرہ یا کوئی ایسا، تو وہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بیماری کے ذریعے، یعنی طاعون کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے تم سے پہلی قوموں پر عذاب نازل کیا. سنو، جب تم یہ سنو کہ کسی شہر میں طاعون وغیرہ وبائی مرض پھیل رہا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر کسی بستی میں یہ مرض پھیل جائے اور تم وہاں موجود ہو تو وہاں سے بھاگ کر نہ نکلو. کیوں؟ کیونکہ کہیں اگر ہے تو پھر جانا نہیں چاہیے، تاکہ وہ مرض ہے اور ایسا ہے جو پھیلنے والا ہے، تو پھر اور لوگ بھی اس کی زد میں آئیں گے. حفاظتی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اور اگر کہیں لگ گیا ہے آپ کو، پھر آپ جگہ جگہ نہ جائیں تاکہ باقی لوگوں کو وہ لگنے لگے. لگے تو موت کے ڈر سے جا رہے ہو تو موت تو پھر آنی ہی آنی ہے. تو یہ ہے اس کا جو ہے وہ اہم نقطہ، کہ اس سے ہمیں کیا بات جو ہے وہ پتہ چلتی ہے. اور دوسری بات جو ہمیں یہاں سے پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے، کہ یعنی ہمارا تقدیر پر ایمان ہونا چاہیے کہ موت جو مقرر ہے وہ تو آنی ہی ہے. لیکن اب اس کا یہ مطلب ہی نہیں کہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھے رہے اور تدبیر بھی نہ کریں، کوئی دوا لینا، کوئی بھی اس سے بچنے کی تدبیر کرنا، تو یہ بھی ضروری ہے. تو ایک طرف یہ یقین کہ جہاں موت لکھی ہے، جس طرح موت لکھی ہے، وہ تو ہے ہی، اور دوسری بات کیا ہے کہ تدبیر بھی کرنا، کہ مطلب اگر کہیں پتا ہے کہ جیسے بعض آج کل بھی ایسے مرض ہیں کہ ایک سے دوسرے کو لگتا ہے، تو پھر اس کا خیال کرنا چاہیے. یہ چیز جو ہے یہ غلط نہیں ہے کہ اس کا خیال جو ہے وہ نہ کیا جائے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاعونی یعنی گلٹی کے درد کا ذکر کیا، تو فرمایا کہ یہ ایک عذاب ہے جس سے بعض امتوں کو عذاب دیا گیا تھا، پھر اس کا کچھ حصہ باقی رہ گیا. اب اس کا یہ حال ہے کہ کبھی چلا جاتا ہے اور پھر آ جاتا ہے. تو جو شخص یہ سنے کہ فلاں خطۂ زمین میں یہ عذاب آیا ہوا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اس خطۂ زمین میں نہ جائے، اور جو شخص اس خطہ میں پہلے سے موجود ہو تو طاعون سے بھاگنے کے لیے وہاں سے نہ نکلے. یہ بخاری کی روایت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک مرتبہ ملک شام کے قصد سے سفر کیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے شام کی طرف سفر کیا، تو جب وہ تبوک کے قریب ایک مقام ہے سرغ، وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ ملک شام میں سخت طاعون ہے. تو یہ طاعون ملک شام کی تاریخ میں ایک عظیم سانحہ تھا. طاعون جو ہے کیا تھا کہ ایک بستی اس کے نام سے مشہور ہے، اس میں تھا جو بیت المقدس کے قریب تھی، سارے ملک میں پھیلا، اور ہزار لوگ جو تھے، کئی ہزار لوگ اس میں فوت ہوئے، جس میں صحابہ اور تابعین بھی تھے. جب آپ نے طاعون کی شدت کی خبر سنی، تو آپ اسی مقام پر ٹھہر کر آپ نے صحابہ سے مشورہ کیا. آپ جا رہے تھے نا ادھر کو، تو وہاں طاعون پھیلا ہوا تھا، کہ مجھے ملک شام اس وقت جانا چاہیے یا واپس ہونا چاہیے. تو اس وقت جتنے حضرات شریک مشورہ تھے، ان میں کوئی بھی ایسا نہ تھا جس نے رسول اللہ سے اس کے متعلق کوئی حکم سنا ہو. تو پھر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے یہ بتایا تھا، وہ حدیث سنائیے والی جو بھی میں نے آپ کو بتائی ہے، کہ جہاں ہے تو جاؤ نا، اور جہاں جن لوگوں کو ہے وہ وہاں سے نکلے نا. تو پھر آپ نے جب یہ حدیث سنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو آپ نے صحابہ کو واپسی کا حکم دے دیا. تو وہاں پہ حضرت ابو عبیدہ تھے جو ملک شام کے گورنر تھے نا، تو انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ فرارن من قدر اللہ، کہ آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں یا بھاگنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے جواب دیا، ابو عبیدہ، کاش یہ بات کوئی اور کہتا، یعنی تمہاری زبان سے ایسی بات قابل تعجب ہے. بے شک ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر ہی کی طرف بھاگتے ہیں، یعنی اللہ کی بتائی ہوئی تدبیر ہے نا، جیسے پیارے رسول وسلم کی تدبیر، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ کی سنت کے مطابق کر رہے ہیں. سمجھ آئی بات کی؟ یعنی خام خواہ وبائی جہاں پہ امراض ہوں، خام خواہ وہاں پہ نہیں جانا چاہیے، یہ بات ہے. تو اب یہاں پہ وہ ان کو جو موت آئی، وہ وبا کی مرض کی وجہ سے وہ ڈر کر بھاگے تھے، اپنے علاقے کو چھوڑا تھا، یا جہاد کی وجہ سے؟ तो अब ये है कि जिससे वो भागे थे वही उनको मिल गई, है ना, मौत आ गई। फिर अल्लाह ताला कहते हैं सुम्मा अहया हूँ, फिर अल्लाह ताला ने उनको दोबारा जिंदगी बख्शी, यानी एक और नस्ल पैदा हुई या उनको इखलाकी जिंदगी दी। इन अल्लाह लजु फज़लिन अलन नासी, बेशक अल्लाह बड़ा फजल फरमाने वाला है लोगों पर। वलाकिन्ना अक्सरन नासी ला यशकुरून, लेकिन अक्सर लोग जो है वो शुक्र अदा नहीं करते। तो अब आप देख लें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पर जो बात बता रहे हैं वो क्या है कि लोगों को अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, और अक्सर लोग जो है वो शुक्र अदा नहीं करते। तो शुक्र अदा करना जो है वो क्या है कि अल्लाह की दी हुई चीजों को अल्लाह के रास्ते में उसके तरीके के मुताबिक इस्तेमाल करना, और कम लोग शुक्र अदा करते हैं। अल्लाह ताला कुरान में खुद ही ये बात भी कहते हैं कि कम लोग शुक्र अदा करते हैं। और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में कहते हैं कि नेमल अब्द, वो बहुत ही अच्छे थे, नेमा कितने अच्छे थे, बहुत अच्छे थे, और साथ ही कहते हैं वो मेरे शुक्रगुजार बंदों में से था। एक बद्दू था ना, मक्का में था और खाना काबा के गिर्द तवाफ कर रहा था, तो वो ये दुआ कर रहा था कि अल्लाह मुझे थोड़े बंदों में शामिल कर ले, अल्लाह मुझे थोड़े बंदों में शामिल कर ले। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ने जो थे ना वो उसकी वो भी तवाफ कर रहे थे, उन्होंने उसका उसकी ये दुआ सुनी तो बड़े हैरान हुए और अपना उनका वो जो दुर्रा है उसको धमकाया। कहने लगे कि ये अजीब दुआ तुम मांग रहे हो, ये मैंने कभी भी नहीं पढ़ी या सुनी कि भी मुझे थोड़े बंदों में शामिल कर ले। तो उन्होंने कहा, बद्दू ने कहा कि मैं तो वो दुआ मांग रहा हूँ जो अल्लाह ताला ने कुरान में ये बात जो कही है कि थोड़े बंदों में से थोड़े बंदे कलील मिन इबादी यशकुरून, के थोड़े बंदे जो है वो शुक्र अदा करते हैं। तो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह बड़े हैरान हुए और कहने लगे कि यानी मुझसे तो एक बद्दू भी इल्म जो है ना वो ज्यादा रखता है। तो ये है थोड़े शुक्र वाले बंदों में शामिल होना, अच्छे हालात हैं बुरे हालात हैं। एक हदीस है जो बड़ी अहम है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने आग देखी और आज जैसा हौलनाक मंजर मैंने कभी नहीं देखा। जहन्नुम में मैंने औरतों की अक्सरियत देखी। सहाबा किराम ने अर्ज किया, क्यों या रसूल अल्लाह? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनकी नाशुक्री की वजह से। सहाबा किराम रजी अल्लाह ने अर्ज किया, क्या वो अल्लाह की नाशुक्री करते हैं? फरमाया, नहीं, बल्कि वो शौहरों की नाशुक्री करती हैं और इनका एहसान नहीं मानती। औरतों का हाल ये है कि अगर उम्र भर तुम इनके साथ एहसान करते रहो फिर तुम्हारी तरफ से कोई मामूली सी तकलीफ उन्हें आ जाए तो कहेंगी मैंने तुझसे कभी सुकून पाया ही नहीं। ये बुखारी ने इसको रवायत किया है। तो एक अच्छी बीवी शुक्रगुजार बीवी होती है, और अल्लाह ताला कहते हैं अक्सरन नासी ला यशकुरून, ज्यादा लोग शुक्र नहीं अदा करते, थोड़े करते हैं। अब दूसरी आयत में जो है वो तवज्जो दिलाई जा रही है, क्या वकातिलु फी सबीलिल्लाहि वालमु अन्नल्लाहा समीउन अलीम, कि अल्लाह की राह में जंग करो और खूब जान रखो कि अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला है। यानी यहाँ पर जो है जिस्मानी जिहाद जो है उसके उस पर मुसलमानों को उभारा जा रहा है। एक हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह नो कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जिंदगी भर जिहाद ना किया और ना ही इसके दिल में जिहाद करने का ख्याल पैदा हुआ वो मुनाफिक की मौत मरा। इमाम मुस्लिम ने इसको रवायत किया है। यानी जिहाद करना, अल्लाह के रास्ते में काम करना, इंतहाई कोशिश करना, ये सिर्फ तलवार से नहीं है बल्कि क्या है कि जिहाद की तीन किस्में हैं कि जो है जबान से, फिर हाथ से, यानी कलम से, हाथ से, और फिर उसके साथ साथ क्या है कि तलवार से। तो मुख्तलिफ तरीके से जो है ये किया जा सकता है। जबान से क्या, तकरीर से या अच्छी तरह बात बताकर, हाथ से यानी आप माल से भी करते हैं और तलवार से भी करते हैं और अपने जिस्म से भी करते हैं। तो मुख्तलिफ इसकी किस्में हैं। तो याद रखो कि अल्लाह सुनने वाला भी और जानने वाला है। तो बनी इसराइल का वाकया बताकर कि वो तो डर कर भागे थे, अब तुम ना डर के भागना, जिहाद करना। मदीना की जिंदगी जिहाद की जिंदगी है, वो कि मुसलमान की तो पूरी जिंदगी जिहाद की जिंदगी है। अब फिर साथ ही माल का जिक्र भी आ गया, मन जल्लजी युक्रिदुल्लाह कर्दन हसनन फयुदाइफहु लहू अदआफन कसीरा। तुम में कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन दे ताकि अल्लाह उसे कई गुना बढ़ा चढ़ा कर वापिस करे। कहते हैं कि ये आयत जब नाजिल हुई तो इस आयत में अल्लाह ताला ने लोगों के सामने एक सवाल रख दिया कि कौन है तुम में से जो अल्लाह को कर्ज हसन दे, ऐसा कर जो खालिस अल्लाह के लिए दिया जाए। यानी वैसे तो कर्ज होता है ना किसी की जरूरत पूरी करने के लिए दिया जाता है, तो यहाँ पे जिस कर्ज का जिक्र हो रहा है वो क्या है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च करना ताकि अल्लाह के दीन जो है ना उसको गलबा मिले। दूसरा ये कि दिल की पूरी खुशी के साथ खर्च करना। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि लोगों कोई है जो अल्लाह को कर्ज दे, और कर्ज भी कर्जन हसनन अच्छा कर्ज होना चाहिए, दिल की तंगी के साथ, दिखावे के लिए, रिया के लिए, फुट दिले के साथ, बखीलीपन के साथ न दिया जाए। और साथ ही अल्लाह ताला ने जो है वो इस चीज की तरफ भी तसल्ली दे दी कि फयुदाइफहू लहू अदआफन कसीरा, कि मैं उसे कई गुना बढ़ा चढ़ा कर वापिस करूंगा। यानी ऐसे कर्जे को जो कर्जे हसन हो अल्लाह ताला 700 गुना तक बल्कि इससे भी ज्यादा बढ़ा कर देता है। लेकिन ये जो बढ़ना है ना, ये इदाफ मुदाफ जो है, ये बढ़ना जो है ये डिपेंड करता है कि हसन है कि नहीं, नीयत अच्छी है कि नहीं, और अल्लाह के लिए है कि नहीं। और ये भी बात पता चलती है कि खर्च करने से माल कम नहीं होता, माल बढ़ता है। कमी और बेशी हमें लग रही होती है ना कि दे रहे हैं तो जो पॉकेट से निकल रहा है, तो हमें वो शायद नजर नहीं आता जो दूसरे रास्तों से हम पर आ रहा होता है। अल्लाह उसको कई गुना जो है वो बढ़ा चढ़ा कर वापिस करता है। हजरत अबू दहदा रजी अल्लाह के बारे में आता है कि जब इस तरह की आयात जो थी वो नाजिल हुई तो उन्होंने वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूछा कि क्या अल्लाह ताला जो है वो हमसे कर्ज मांगते हैं। कहा कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, क्या अल्लाह ताला हमसे कर्ज मांगते हैं हालांकि वो कर्ज से मुस्तगनी हैं। आपने फरमाया हाँ, अल्लाह ताला ये चाहते हैं कि इसके जरिए से तुमको जन्नत में दाखिल कर दें। अबू दहदा रजी अल्लाह अन्हु ने ये सुनकर कहा, अल्लाह के रसूल हाथ बढ़ाइए। आपने अपना हाथ बढ़ा दिया। अबू दहदा रजी अल्लाह अन्हु ने कहना शुरू किया, यानी अपना हाथ रसूल अल्लाह के हाथ में दिया और कहा, मैं खजूर के दो बागों का मालिक हूँ, इसके अलावा मेरी मिल्क में कुछ नहीं, मैं अपना अपने ये दोनों बाग अल्लाह ताला को कर्ज देता हूँ। आपने उनसे फरमाया, एक अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दो और दूसरा अपने घर वालों की माशी जरूरत के लिए बाकी रखो। अबू दहदा रजी अल्लाह ने कहा, आप गवाह रहिए, इन दोनों में से बेहतरीन बाग जिसमें खजूर के 600 दरख्त हैं इसको मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च करता हूँ। आपने फरमाया, अल्लाह तुम्हें इसके बदले में जन्नत अता करे। अबू दहदा रजी अल्लाह अपने घर आए, उसी बाग में उनका अपना घर भी था, और बीवी को इसकी इत्तला दी तो वो भी अबू दहदा रजी अल्लाह अन्हु के सौदे पर बहुत खुश हुई और कहा कि अबू दहदा तुमने बड़े नफे का सौदा किया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कम मिन इज़्क़िन रदाहिन व दारिन फयाहिन ले अबी दहदा, खजूरों से लबरेज बेशुमार दरख्त और खजूर और कुशादा महल्लात कितने ज्यादा हैं जो अबू दहदा के मुंतजर हैं जन्नत में। तो आप सोचें कि बाहर ही मियाँ ने आयत सुनी है, बाहर ही बाग अल्लाह के नबी को कह दिया कि आप गवाह रहिए कि मैंने दे दिया, तो घर आके बीवी को बताया तो वो रोई पीटी तो नहीं, ये तो नहीं कहा कि ये तो देखा होता अल्लाह के बंदे घर भी इसमें अब जाना कहाँ रहना कहाँ है ना। कहा कि अबू दादा तुमने नफे का सौदा किया। तो अजवाज मोहतारात की बात हो या सहाबियात की बात हो, नेकी के कामों में कभी पीछे नहीं रही, हमेशा जो थी आगे बढ़कर उन्होंने भी साथ दिया। तो अल्लाह ताला भी कहते हैं कि मैं उसको जो है वो कई गुना जो है वो बढ़ा चढ़ा कर जो है वो वापस करूंगा। तो हमें क्या करना चाहिए कि जब अल्लाह के दीन को जरूरत हो, और तो हमें जाहिर करके भी और छुपा के भी मुख्तलिफ तरीके से इन्फाक अल्लाह के रास्ते में करना चाहिए। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, एक आदमी ने पूछा कि कौन सा सदका अजर और सवाब के लिहाज से बड़ा हुआ है, अय्यु सदकती आजम अजरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो सदका सबसे अफजल है जो तू इस जमाने में करे जबकि तू सही और तंदुरुस्त है। और तुझे मोहताजी का भी डर है, और ये भी तवक्को है कि तुझे मजीद माल मिल सकता है। ऐसे जमाने में सदका करना सबसे अफजल है। सही तंदुरुस्त है, माल पास है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन और तू ऐसा न कर कि जब जान तेरी हलक में आ जाए। हत्ता इजा बलगतिल हुलकूम कुलता लि फुलानिन कजा वाले फुलानिन कजा फकद कान लि फुलान, और तू कहने लगे कि इतना फलां का और इतना फलां का, अब तेरे कहने का क्या फायदा, अब तो फलां का हो ही चुका। होता ना कि अब मैं जा रहे हैं दुनिया से तो फलां फलां को बांटने, नहीं, जब तू सही तंदुरुस्त है और तुझे जरूरत है उस माल की, उसको अल्लाह के रास्ते में खर्च कर। ये बुखारी और मुस्लिम ने इसको रवायत किया है। इसी तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर फरमाया, कोई दिन नहीं गुजरता मगर ये अल्लाह की तरफ से दो फरिश्ते उतरते हैं, इनमें से एक खर्च करने वाले बंदे के लिए दुआ करता है और कहता है अल्लाह तू खर्च करने वालों को अच्छा इज्जत दे, और दूसरा फरिश्ता तंग दिल बखीलों के हक में बददुआ करता है कि अल्लाह बुखल करने वालों को तबाही और बर्बादी दे दे। बुखारी और मुस्लिम ने इसको भी रवायत किया है। तो क्या करना चाहिए, इंफाक करना चाहिए अपनी हैसियत के मुताबिक, ये नहीं कि हजारों होंगे तो देंगे, $1 भी हो सकता है और एक पैनी भी हो सकती है और एक अच्छी बात भी हो सकती है, जो भी सदका कर सके। अल्लाह यक्बिदु व यबसुत, और ये अल्लाह के अख्तियार में है, किसी को कम देता है और किसी को ज्यादा। व इलैहि तुरजऊन, और लोगो अल्लाह की तरफ जो है तुम क्या होगे, तुम्हें पलट कर जाना है। तो यहाँ पर जो बात बताई जा रही है वो क्या है कि यानी जैसे किसी के पास माल कम है और किसी के पास जो है वो माल ज्यादा है, तो दिल छोटा नहीं करना चाहिए। तंगी और कुशादगी जो है ना, इसका इंहिसार आदमी की तदबीर पर नहीं है, ये अल्लाह के इख्तियार में है। अगर इंसान इसलिए अपने माल को बचाता है और छुपाता है कि इस तरह उसका कम हो जाएगा, तो अल्लाह छीन भी सकता है। यानी उसको छुपाना नहीं चाहिए, बल्कि ये अल्लाह ने, अल्लाह की करीमी है, खुद ही माल दिया, खुद ही उसकी कीमत लगाई कि तुम मेरे रास्ते में दोगे तो कई गुना बढ़ा चढ़ा कर तुम्हें इसको फिर वापस करूंगा। तो क्या है, हौसले के साथ अल्लाह के रास्ते में खर्च करना चाहिए और इसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे। यानी जो कुछ भी इंसान फिर अमल करेगा तो क्या है कि अल्लाह की तरफ जाना है। अल्लाह को क्या मुंह दिखाएंगे कि उसी का दिया हुआ माल उसी के रास्ते में जब खर्च करने की बारी आती है तो हम कहते हैं कि क्यों, है ना, रिश्तेदारों को देना और गरीबों को देना, मिस्कीनों को, यतीमों को, फिर दीन को कायम करने के लिए। तो मत भूलें कि जिंदगी तो चंद रोजा है, असल जिंदगी तो आखरत की जिंदगी है, उसकी हमें फिक्र करनी चाहिए। फिर अल्लाह ताला पूछते हैं कि अलम तरा इलल मलाई, अब दूसरा वाक्या शुरू हो रहा है, क्या तुमने देखा सरदारों को, मिम बनी इसराइला मिम बाद मूसा, यानी क्या तुमने उस मामले पर भी गौर किया, तुमने कुछ सोचा कि मूसा अलैहिस्सलाम के बाद बनी इसराइल के सरदारों को क्या वाकया पेश आया था। ये बड़ा अहम वाकया था, तुम इस पे गौर करो, तुम इस पे सोचो। यहाँ पर अल्लाह ताला जो है वो लोगों को, मुसलमानों को, सबको सोचने पर जो है वो मुतवज्जो कर रहे हैं। अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, इस कालू ले नबी यिल्लाह मुबस लना मलिकन नुकातिल फी सबीलिल्लाह, जब बनी इसराइल के सरदारों ने अपने नबी से कहा हमारे लिए एक बादशाह मुकरर कर दो ताकि हम अल्लाह की राह में जंग करें। अब बनी इसराइल के जो सरदार थे, अब वो तालूत अलैहिस्सलाम से मुतालबा कर रहे हैं कि एक बादशाह हमारे लिए मुकरर करो। तो आप देख लीजिए कि वो ये नहीं कह रहे कि कोई खलीफा या सिपा सलार, बल्कि बादशाह मांग रहे हैं, क्योंकि जो उस वक्त के नबी थे वो बूढ़े हो चुके थे, बूढ़े नबी समोइल, उनसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे लिए एक बादशाह मुकरर कर दो ताकि हम अल्लाह की राह में जंग करें। अब उसका मकसद क्या बता रहे हैं, नुकातिल फी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह के रास्ते में जंग करें। तो असल में बाज मुतालबात ऐसे होते हैं कि कोई काम करना, और बाज मुतालबात ऐसे होते हैं फरार के लिए, ये करते हैं तो फिर ये करेंगे, ये करते हैं तो फिर ये करेंगे, है ना। और बाजू का आप मुतालबात पूरे करते जाए तो एक और मुतालबा आ जाता है। अब वो जो नबी थे, वो नबी समोइल जो थे, वो खूब वाकिफ थे कि इनका असल मर्ज क्या है। तो उन्हें पता था कि ये लोग जो है ये जिहाद से जी चुराते हैं और जिहाद नहीं करना चाहते और फरार चाहते हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा, सवाल पूछा उनसे कि काला हल असैतुम इन कुतिबा अलैकुमुल कितालु अल्ला तुकातिलु, कि जब जिहाद तुम पर फर्ज कर दिया जाए तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि फिर तुम इनकार ही कर दो और तुम लड़ाई ना करो। पक्का किया पहले उनसे पूछा कि बताओ फिर करोगे अगर आपका ये मुतालबा पूरा कर दिया जाए। कालू वमा लना अल्ला नुकातिला फी सबीलिल्लाही, कि हम ऐसा क्यों ना करें कि हम अल्लाह के रास्ते में जिहाद करें, हमें यानी ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता है कि हम अल्लाह के रास्ते में ना लड़ें, हमारा हाल क्या है। फकद उखरिजना मिन दियारिना व अबनाइना, कि हमें तो हमारे बाल बच्चे से भी जुदा कर दिया गया और हमें हमारे घरों से भी निकाल दिया गया, यानी घर बार भी हमारे पास नहीं है और बच्चे भी हमसे दूर है ना। तो ये थी उस वक्त बनी इसराइल की हालत। अब ये के बनी इसराइल के वो लोग जो थे वो कहाँ से निकाले गए थे, किन्होंने उन पर कब्जा कर लिया था, किन्होंने उनकी जगह छीन ली थी, इसकी तो जरूरत नहीं है तफसीलात में जाने की। असल मकसद क्या है कि ये वाकया दर्स क्या देता है, मकसद क्या है इसका। असल मकसद ये है कि बनी इसराइल के लोग बड़े बुजदिल हो गए थे, उनके अंदर बड़ी नफसानियत आ गई थी, उनके अंदर इखलाकी नज्म व जब्त की कमी थी और उसकी वजह थी कि वो जवाल का शिकार होते चले गए। तो मुसलमानों को मतवज्जो किया जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी जो है ना इसी तरह मदीना में चले गए, अब जगह भी मिल गई, अब ताकत भी हासिल हो गई, अब तुम्हें गलबा नसीब हो रहा है और गजवा बदर होने वाली थी, तो अब कहीं ऐसा ना हो कि तुम लोग जो है वो कहो कि हम नहीं कर सकते जंग, है ना। या और जो गजवात सर पर खड़ी थी तो मुसलमानों को जो है वो जिहाद के लिए आमादा किया जा रहा है कि हसबे आदत बनी इसराइल इनकार करते थे, कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान भी जो है ना वो इनकार करने लग जाए। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फलम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़िताल, जब उनके ऊपर जिहाद लिख दिया गया तवल्लौ, तो वो उससे फिर गए, इल्ला कलीलम मिनहुम, मगर थोड़े इनमें से, यानी थोड़ों ने जिहाद किया और ज्यादातर लोगों ने जो है वो जिहाद करने से इनकार कर दिया, थोड़े थे जिन्होंने बहसें नहीं की। तो इससे क्या बात पता चलती है कि बाज औकात जो है वो लोग क्या करते हैं कि जो असल काम है उसको करने की बजाय हीलो बहानों से काम लेते हैं। तो मुसलमानों को भी क्या करना चाहिए कि जब अल्लाह ताला कोई काम उनके ऊपर फर्ज कर दें, वक्त की जरूरत हो, नफीरे आम हो जाए, यानी मुसलमानों के इमामों की तरफ से भी ऐलान हो जाए कि इस वक्त जरूरत है इस काम की, मुसलमानों को उठकर उसमें साथ देना चाहिए। और आमतौर पर ऐसे मौकों में भी थोड़े लोग होते हैं जो करने वाले होते हैं। अल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन, और अल्लाह इनमें से एक एक जालिम को जानता है। अल्लाह ताला को खूब पता है कि कौन लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं और कौन लोग जो हैं वो काम नहीं करते, क्योंकि अल्लाह का इल्म है ना अल्लाह के पास, तो इसलिए अपने इल्म के मुताबिक अल्लाह जो है वो फैसले करेगा। वकाला लहुम नबीयुहुम, और उनके नबी ने उनसे कहा इन्नल्लाह कद बासा लकुम तालूता मलिका, बेशक अल्लाह ने तुम पर तालूत को बादशाह मुकर्रर कर दिया। और तालूत जो थे इनके बारे में आता है कि एक 30 साल का नौजवान खूबसूरत और कद आवर शख्स था, ये बड़ा लंबा इनका कद था। इस पर कई लोगों ने फिर मजीद एतराज कर दिया, अल्लाह ताला ने तो खूबसूरत नौजवान को मुकर्रर किया ना, और फिर भी लोगों ने और जो है वो एतराज किया। कालू अन्ना यकून लहुल मुल्कु अलैना वलानु अहक्कु बिल मुल्कि मिन्हु फलम यूता सातम मिनल माल, ये सुनकर वो बोले वो हम पर बादशाह बनने का हकदार कैसे हो गया जिसके मुकाबले में बादशाही के हम ज्यादा मुस्तहिक हैं, और वो तो कोई बड़ा मालदार भी नहीं है। अब इन्होंने जो है वो हुज्जतबाजी की, इन्होंने जो है वो इनकार किया। और इन्होंने जो इतराज किया वो क्या था कि यानी हम ज्यादा हकदार हैं बादशाही के, हम सरदार हैं, हमारी जमीनें हैं, हमारी जागीरदारियां हैं। दूसरी बात क्या थी, और उसको माल भी नहीं दिया गया, यानी वो कोई बड़ा मालदार भी नहीं है। और इनके बारे में आता है हजरत तालूत के बारे में कि इनका कबीला भी बनी इसराइल के कबीलों में सबसे छोटा था और इनका घराना भी उनमें सबसे छोटा था। तो अब इस पर वो लोग एतराज करने लगे, यानी माल भी नहीं है, अदद भी नहीं है, अब कमजोर आदमी है, हमारे मुकाबले में कोई कबीला भी इसका सामने नहीं आ सकते आ सकता। तो सरदारों को क्या था, माली घुमंड भी था और असबियत भी थी अपनी, तो इसलिए उन्होंने एतराज किया। तो असल बात क्या है कि इंतखाब तो अल्लाह ने किया, और अल्लाह का जो इंतखाब है वो कैसा होता है, वो माल से अल्लाह नहीं मापता किसी को, उसकी सरदारी को नहीं तोलता, अल्लाह तो इल्म और अमल के पैमाने से मापता है। तो तालूत के पास अगरचे खानदान की शौकत और माल की फरावानी तो नहीं थी, लेकिन माल की वुस्सत थी, अमल की कुव्वत से वो भरपूर थे, और अल्लाह के यहाँ असल अहमियत इन्हीं चीजों को हासिल है, ना कि खानदान और माल को। उन्होंने क्या जवाब दिया, قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطا في العلم والجسم। नबी ने जवाब दिया, अल्लाह ने तुम्हारे मुकाबले में उसी को मुंतखब किया है और इसको दिमागी और जिस्मानी दोनों किस्म की अहलियतें सलाहियतें फरमानी के साथ अता की हैं, यानी इल्म की भी और जिस्म की भी। तो अब आप देख लें कि असल चीज जो अल्लाह ताला के यहाँ अहम है वो क्या है कि मजबूत जिस्म का होना और फिर इल्म होना। और अगर किसी के पास इल्म होता है तो इल्म ही उसके अंदर अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ जो है वो पैदा करता है। और कहते हैं कि उनके ये जो है ना कि वस्तातन फिल इल्मी वल जिस्म, तो इसकी तफसीर में अल-मुजद में भी ये बात लिखी हुई थी कि उनको जो अल्लाह ताला ने बसीत फिल इल्म दिया था तो क्या करते थे कि खुद भी फायदा उठा रहे थे इससे और दूसरों को भी फायदा दे रहे थे, यही इनका बस्ता था, यही इनकी सखावत थी। पैसे तो नहीं थे लेकिन इल्म को दिन रात बांट रहे थे, और जिस्म की जो मजबूती थी ना इससे वो लोगों की मदद करते थे। तो एक बात और क्या समझ आई कि बाजू का इल्म होता है लेकिन ताकत नहीं होती है ना, तो ताकतवर मोमिन जो है वो कमजोर मोमिन से ज्यादा बेहतर है, जिसके अंदर कुव्वत हो, सलाहियत हो, और मतलब उससे क्या पता चलता है, अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, मजबूती हो, क्योंकि खाली ख्वाहिशात से ना हम खिदमत नहीं कर सकते, अपने बच्चों की जिम्मेदारियां, शोहर के फराइज अदा नहीं कर सकते, कुजा ये कि बाहर कोई अच्छा काम हम कर लें सोसाइटी में या खानदान में या रिश्तेदारों में, तो ये भी बहुत जरूरी है। तो अल्लाह ताला ने जो उनको सलाहियतें दी थी, एक इल्म थी, दूसरी जिस्म थी, तो जिस्मानी कुव्वत, बाज़ लोग अपनी सेहत को बहुत इग्नोर करते हैं, ना आराम का ख्याल, ना खाने का ख्याल, ना किसी और चीज का, तो ये चीज भी अच्छी नहीं है। और अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, वल्लाहु युतील मुल्क मुल्कहु मन यशा, और अल्लाह जिसको चाहता है अपना मुल्क अता करता है, वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह जो है वो वसी इल्म वाला है। तो इससे जो है और क्या बात पता चलती है कि यानी ये अल्लाह का फैसला है, वो अपनी कुदरत से और अपने इल्म की रोशनी में जिसको चाहे मुंतखब कर ले, तो इसका फैसला जो है वो दौलत पे, माल पे, जागीरदारी पे और सरदारी पे नहीं है, ये अल्लाह का फैसला है, जिसको चाहे अल्लाह अपने काम के लिए जो है वो चुन ले। وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى وال هارون تحمله الملائكه। इसके साथ उनके नबी ने उनको ये भी बताया कि अल्लाह की तरफ से उसके बादशाह मुकर्रर होने की अलामत ये है कि इसके अहद में वो संदूक तुम्हें वापस मिल जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए सुकून कल्ब का सामान है, जिसमें आले मूसा और आले हारून अलैहिस्सलाम के छोड़े हुए तबरुकात हैं और जिसको इस वक्त फरिश्ते संभाले हुए हैं। तो अब आप देख लें कि अब वो लोग चूंकि मुतमईन नहीं थे बनी इसराइल के लोग कि यानी हमारी बजाय अल्लाह ताला ने जो है वो तालूत को हम बादशाह कैसे बना दिया, जो बनी इसराइल के सरदार थे वो इस बात पर बिगड़ रहे थे, नाराज हो रहे थे, परेशान थे कि वो कैसे हकदार बन गया। तो एक तरफ नबी जो हैं उनको ये बात समझा रहे हैं کہ یہ تو اللہ کا اختیار ہے، اللہ جس کو چاہے اپنا ملک دے اور وہ بڑی وسعت والا ہے، اللہ کی مرضی ہے جس کو چاہے کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھا دے اور جس کو چاہے تخت سے اٹھا کر سمندر کی لہروں کے سپرد کر دے، جس کو چاہے کرے. یتیم بچہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بن باپ کے پیدا ہوئے اور ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیں کہ کتنی عزت، کتنی ترقی، کتنی شان و شوکت اور کتنا مرتبہ ان کو عطا کیا. مدینہ کی اسلامی اسٹیٹ کے پہلے سپہ سالار اور پہلے حاکم، منتظم، خلیفہ، سب کچھ مقرر ہوئے. اور مکہ والے پیٹتے ہی رہ گئے، روتے ہی رہ گئے، اور طائف کے سردار بھی کہ ہمیں کیوں نہیں بنایا گیا. ہر دور میں ایسا ہوتا رہا اور اب بنی اسرائیل کے لوگ بھی اس بات پر ناراض ہیں. تو یہ بات یاد رکھنے والی ہے کہ اللہ کا اختیار ہے، اللہ جب جس کو عزت دینا چاہے جیسے چاہے دے دے، تو دنیا میں اس بات پر بگڑنا نہیں چاہیے. تو ایک طرف تو نبی نے یہ بتایا کہ یہ اللہ کا اختیار ہے، اور دوسری طرف اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس کی ایک نشانی ہے، اس کے نبی مقرر ہونے کی، تالوت کی ایک نشانی ہے. اور وہ کیا ہے؟ کہ وہ ایک صندوق تمہیں مل جائے گا، اور صندوق بھی ایسا جس میں تمہارے لیے سکون قلب بھی ہے اور اس کے اندر تبرکات بھی ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے جو چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ صندوق تمہیں مل جائے گا. اور اس صندوق کے بارے میں بائبل سے جو بات پتہ چلتی ہے کیا ہے، کہ یہ صندوق جسے بنی اسرائیل اصطلاحاً عہد کا صندوق کہتے تھے، ایک لڑائی کے موقع پر فلسطی مشرقین نے بنی اسرائیل سے چھین لیا تھا. لیکن یہ مشرقین کے جس شہر اور جس بستی میں رکھا گیا وہاں وبائیں پھوٹ پڑی. آخرکار انہوں نے خوف کے مارے اسے ایک بیل گاڑی میں رکھ کر گاڑی کو ہانک دیا، یعنی بیل گاڑی کے اندر کوئی آدمی بھی نہیں بیٹھا، بس بیل گاڑی میں اس کو رکھا اور اپنی بستی سے باہر نکال دیا. جہاں رکھتے تھے نا وہاں بیماری پڑ جاتی تھی. اسی معاملے کی طرف غالباً قرآن نے بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ جو صندوق ہے جس میں بنی اسرائیل یہ سمجھتے تھے کہ اگر صندوق ہمارے پاس آئے تو فتح مل سکتی ہے. جیسے ان کے دل میں ایک بات تھی کہ وہ ایک بڑی متبرک چیز ہے اور بڑی کامیابی کی چیز ہے، تو وہ ہم سے چونکہ چھین گیا ہے اور اس میں سارے تبرکات ہیں انبیاء کے بھی، تو اب اس لیے ہم جو ہے نا ہمارے اندر جہاد کا جذبہ اور شوق بھی نہیں ہے اور ہم مار کھا رہے ہیں. تو وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ صندوق کو یاد کرتے تھے، لیکن اس کو لیں کیسے، وہ تو دشمنوں کے پاس تھا. اب نشانی یہ بتائی کہ یہ تمہیں مل جائے گا. اس یہ جو تالوت علیہ السلام جو ہیں ان کے بادشاہت کے زمانے میں یہ تمہیں مل جائے گا. اور دوسری بات کیا بتائی کہ اس کو فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں، ہے نا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، تحملہ الملائکہ، فرشتے اس کو سنبھالے ہوئے ہیں. تو اب کیا تھا کہ جب وہ بستی والوں نے خوف کے مارے بیل گاڑی پر رکھ کر صندوق کو گاڑی کو ہانک دیا، تو بیل گاڑی کو بیل کہاں لے کے جا رہے تھے؟ فرشتے بتا رہے تھے کہ اب کہاں لے کے جاؤ. فرشتے جو تھے اس کی اس وقت رکھوالی کیے ہوئے تھے، تو گاڑی بغیر کسی گاڑی باندھ کے جب ہانکی گئی، اب فرشتے اس کو ہنکا کر جو ہے وہ بنی اسرائیل کے پاس لے آئے. تو یہ ہے بات جس کی طرف یہاں پر جو ہے وہ اشارہ کیا گیا، کیونکہ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے فتح اور نصرت کا نشان تھا. اور جب وہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، پوری قوم کی ہمت ٹوٹ گئی، وہ پست ہمت ہو گئی، اور وہ ہر بنی اسرائیل کا آدمی یہ خیال کرنے لگا کہ اللہ کی رحمت ہی ہم سے اب پھر گئی ہے، برے دن آ گئے ہیں. اور پھر اس صندوق کا واپس آنا اس قوم کے لیے بڑی تقویت قلب کا باعث تھا، باعث سکون تھا، ایک ایسا ذریعہ تھا کہ جس سے ٹوٹی ہوئی ہمتیں پھر سے ہمتیں بندھ سکتی تھی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ان فی ذلک لآیت لکم ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بڑی نشانی ہے کہ بغیر جہاد کے، بغیر کوشش کے، بغیر کسی محنت کے صندوق خود بخود تمہارے پاس چلا آئے. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ کون ایسا کر سکتا ہے؟ یہ صرف اللہ ہی کی جو ہے وہ نشانی ہو سکتی ہے کہ وہ تبرکات جو کہ آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تھے وہ بھی اس کے اندر موجود تھے. اس سے مراد وہ پتھر کی تختیاں جو کوہ سینا پر موسیٰ علیہ السلام کو ملی تھیں، یا پھر تورات کا وہ اصل نسخہ جو اس کے اندر تھا، خود لکھوا کر موسیٰ علیہ السلام نے بنی لاوی کے سپورٹ کیا تھا، یا پھر ایک وہ بوتل کے اندر من بھر دیے گئے تھے، وہ سارے اس کے اندر جو تھے موجود تھے. اور تم اس کو یاد کرتے ہو، تو وہ جو ہے یہ اللہ کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ جو ہے یہ واپس لوٹا دیا. تو اب جو ہے نبی نے بنی اسرائیل کو سمجھایا اور بتایا انتخاب بھی اللہ کا ہے اور یہ فیصلہ بھی اللہ کا ہے, یہ نشانی بھی اللہ کی ہے. تو تم اللہ کے ساتھ مت لڑا کرو, اللہ کے ساتھ مت جنگ کیا کرو, اللہ کے فیصلوں سے نہیں لڑنا چاہیے. بعض اوقات انسان اللہ کے فیصلوں سے لڑنے لگتا ہے نا, کہ ایسا کیوں ہو گیا, ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو گیا, ہمیں ہی یہ چیز کیوں ملی, اور پھر میرے حالات اور میری چیزیں اور میری باتیں. تو یہ بہت سی باتوں سے جو یہاں پر جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ یہ اللہ کے فیصلے ہیں, اللہ جو چاہے جس کو چاہے دے اور جو اللہ چاہے فیصلہ کرے. ہمارا کام کوشش کرنا ہے کہ نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا ہے, اور جو اللہ کی نشانیاں ہیں نا وہ جب ہم دیکھیں تو اسے ہمارے ایمان مضبوط ہونے چاہیے. فلما فصل تالوت بالجنود, پھر جب تالوت لشکر لے کر چلا, قال ان اللہ مبتلیکم بنہر, تو اس نے کہا ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے. اب یہاں پر تالوت علیہ السلام جو ہیں اپنی فوج کو دشمن سے مقابلہ کروانے سے پہلے ہی ڈسپلن سکھا رہے ہیں, انہیں اطاعت اور وفاداری کا امتحان لینے کے لیے بتا رہے ہیں کہ اب تمہاری آزمائش ہونے والی ہے, کہ ابھی راستے میں ایک ندی آنے والی ہے, فلاں ندی جو ہمارے راستے میں آئے گی, تو یہ ندی جو ہے نا یہ تمہارا امتحان ہے. یہ اعلان کر رہے ہیں نبی, پہلے سے ہی بتا رہے ہیں. اور یہ اعلان کیوں کیا؟ اس لیے کہ نہر جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ تمہارے اندر ڈسپلن کتنا ہے, نظم و ضبط کتنا ہے, اطاعت کتنی کرتے ہو رسول کی اور خلیفہ کی, اور اپنا جو بادشاہ تم نے اپنے منہ سے مانگا تھا اس کی, اور پھر وفاداری کا تمہاری کا امتحان ہے. ان اللہ مبتلیکم, وہی بلا یبلو ہے نا, اور مبتلا کرنا, امتحان, جانچ پرکھ, سونے اور کھوٹے کو جو ہے وہ کھڑے اور کھوٹے کو الگ کرنا, تو یہ امتحان ہوگا کس سے؟ ایک نہر کے ذریعے. فمن شرب منہ فلیس منی, جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں. فمن لم یطعمہ فانہ منی الا من اغترف غرفۃ بیدہ, میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے, ہاں ایک آدھ چلو کوئی پی لے تو پھر کوئی ایسی بات نہیں, یعنی ایک آدھ چلو ایک آدھ گھونٹ پی لے تو پیا جا سکتا ہے, ایک دو گھونٹ پیے جا سکتے ہیں. تو اب آپ دیکھ لیں, ایک طرف بنی اسرائیل کے لوگ یہ کہتے تھے کہ ہمیں جہاد کرنا ہے, ہمارے پاس کوئی مضبوط خلیفہ بادشاہ ہونا چاہیے, امیر لشکر کا انتخاب کا مطالبہ وہ بڑے انہوں نے زور و شور سے کیا. اب دوسری طرف اللہ نے وہ خلیفہ بھی دے دیا, اب کیا ہے کہ جہاد کا جنگ کا موقع آنے والا ہے, تو اب ان کے اندر جو ہے وہ ڈسپلن نظم و ضبط جو ہے دیکھ لیں کہ اس کے لحاظ سے وہ بڑے ہی کچے نکلے. پہلے دن انہوں نے بتا دیا تھا جب نبی نے کہ ایسا نہ ہو کہ تم لوگ جو ہے آگے جب تم جاؤ تو نہر آئے, تو ایسا نہ ہو کہ تم اس کا پانی پیٹ بھر کے پی لو, بلکہ کیا ہے کہ جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں. امتحان کیا ہے کہ تم پانی نہیں پینا اس نہر کا, ہاں اگر بہت ہی پیاس لگی ہے راستے میں پانی آ گیا ہے تو ایک دو گھونٹ چلو بھر پی لو, تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے نا. تو آپ دیکھ لیں کہ ایسا ہوتا ہی ہے کہ کوئی بھی فوج, کوئی بھی لشکر, کوئی بھی گروہ جو ہے اس کو میدان میں اتارنے سے پہلے اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے. مثلاً اگر یہاں سے کوئی فوج کسی دوسرے کنٹری میں جاتی ہے, ایسے تھوڑی وہاں کے موسم کا, ماحول کا اس کو عادی پہلے سے بنایا جاتا ہے, اس کو کئی کئی مائل جو ہے دوڑایا جاتا ہے, یعنی پاکستان کی جو فوج ہے وہ بھی, کہ کئی کئی مائل پھر ان کو بھوکا رکھا جاتا ہے بعض اوقات, پھر ان کو جو ہے بہت تھوڑے وقت میں جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ تم تیار ہو جاؤ. جیسے ابھی یہاں پہ ایک لڑکی یہاں کی فوج میں گئی ہے کینیڈا کی, میں تو بتا رہی تھی کہ ہمیں ہمارے شرٹ کے بٹن کھلے رکھنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے, بال کی لٹ نہیں باہر نکال سکتے, بال باندھے ہوئے ہونے چاہیے. اگر ہم میں سے جیسے ہم پھٹی ہوئی فیشن ہے نا وہ, ہم تو اس کو پھٹی ہوئی پینٹ کہہ کے اس کا مزہ ہی خراب کر دیتے ہیں, ہے نا, پیون لگی ہوئی ہے, پھٹی ہوئی ہے, یا ریشے نکلے ہوئے ہیں اس کے, تو وہ اتنی قیمتی اور ہوتی ہے, یا پھر ایسی نئی پینٹ ہو پر ہو پرانی, यानी हो नहीं लगे पुरानी, तो पत्थर डाल डाल कर शायद उसको दो कलर का करते हैं और बड़ी वो महंगी मिलती है। हम कहते हैं ये तुमने क्या लेनी है, लेकिन बच्चे कहते हैं कि नहीं पीयर प्रेशर, और वो लेना चाहते हैं ना। तो बच्ची बता रही है हम इस तरह की पैंटे भी नहीं पहन सकते, हमारे लेसेस खुले हुए नहीं हो सकते, और अगर हम में से कोई करे तो कहते हैं कि 50 टाइम जो है ना तुम पुशअप्स करो 50 टाइम। तो कहती है हिम्मत ही नहीं किसी के अंदर होती कि इतनी छोटी सी गलती जो है हम कर लेना 50 टाइम। ऑफिसर कहता है कि अब तुम पुशअप्स करो, कि ये तुमने किया है ये किया। तो यानी हर यानी ड्रेसअप होने में भी जाब्ते का पाबंद, बातचीत में भी, वक्त की पाबंदी भी, टाइम बे टाइम भी, और मुख्तलिफ तरह से ट्रेनिंग जो है वो दी जाती है। क्यों? अगर जो है वो पहले से इतने सख्त वो उसके आदी नहीं होंगे सिपाही या पुलिस के लोग, तो फिर वो अपने बाल ही संवारते रहेंगे, बटन खुले रखेंगे तो उससे और क्या क्या चीजें होंगी हैं। तो ये सारी बात है कि अब यहाँ पर भी अल्लाह ताला ने जो बात बताई कि तुम्हारा इम्तिहान है एक नहर से, पानी की नहर से, और यहाँ पे जो है वो तालूत ने ये भी बताया कि ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहर, यानी अल्लाह ने इस नहर से तुम्हारा इम्तिहान जो है वो मकसूद रखा है, यानी तुम्हारा इम्तिहान होगा। और 100% कामयाबी क्या थी? कोई पिए ही नहीं इसे पानी, तो 100% कामयाबी है, चखना ही नहीं है, ठीक है। हाँ अगर एक आध घूंट कोई पी ले तो ये काबले माफी है, काबले दरगुजर है। और शर्त क्या थी घूंट पीने की? ये नहीं था ग्लास में भर के पीना है, कास नहीं लिखा हुआ, इल्ला मनी तरफा गुरफतम बेयदी, यद हाथ की कैद लगा दी। क्योंकि ग्लास में जब पीते हैं और प्यासे हों तो कितना ही पी जाएं, अब हाथ में तो आता ही ज्यादा नहीं है, जो आएगा वो भी गिरेगा। तो शर्त में क्या है कि हाथ की कैद लगा दी, कि ग्लास या डोंगे या बर्तन या बाउल या किसी से नहीं पीना। अशरबु मिनहु इल्ला कलील मिनहु, मगर एक ग्रोह कलील के सिवा वो सब इस दरिया से सैरियाब हुए, यानी थोड़े से लोगों के अलावा सबने वो पानी जो था वो पी लिया। जिन लोगों ने अपनी प्यास बर्दाश्त की, कहते हैं कि इनकी तादाद सिर्फ 313 या इसके लगभग थी, उन्हें सबर करने वालों में, उन्हीं सबर करने वालों में बूढ़े बनी जो लोग थे उनमें बूढ़े नबी शमूएल भी थे, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, और इनके बाप और इनके 6 भाई शामिल थे। और रवायत है बरा बिन आजिब की कि बाकी जो तादाद बाकी रह गई ये बस ये वही थी जो असहाबे बदर की थी, बुखारी ने इसको नकल किया है। तो तकरीबन असहाबे बदर कितने थे, बदरी सहाबी तकरीबन है ना 313, तो इनकी तादाद भी इतनी ही थी जिन्होंने जो है वो सबर किया। और क्या था कि ज्यादातर लोग जो थे वो फिर सबर न कर सके। तो इससे जो है क्या बात पता चलती है कि अगर कोई शख्स जो है वो ऐसे किसी चीज पर ही पूरा नहीं उतरता तो फिर आगे जाकर मैदान जो है उसको कैसे मारेगा, है ना। अब आप देख लें कि मसलन रमजान का महीना होता है, रमजान के महीने में सुबह सहरी करनी होती है और जब बड़ी गहरी मीठी नींद हम होते हैं, फिर शाम में हम अफ्तारी करते हैं, अफ्तारी के लिए हम भी ढेरों सामान जमा करते हैं, कोई बादामों का रोगन इकट्ठा कर रहा है तो कोई कहता है शीर खोरमा, तो कोई कहता है कि दूध में मगजियात डालकर, और कोई कहता है नहीं मैंगो शेक होना चाहिए, और कोई मुख्तलिफ चीजें हम इकट्ठी करते हैं ना। अच्छा उसमें भी आप देखें कि रमजान के महीने में सुबह से जब भूखे रहे तो कम अज कम रोजा खोल के आराम कर लेते, रूटीन से हटकर कहा कि इशा के बाद इजाफी नमाज, तरावी की नमाज, पूरा कुरान उसमें सुनना सुन्नत है ना। बाज़ुकात वो अफ्तारी में ही मशरूबात जो लोग ज्यादा पी लेते हैं वो भी कुछ खा नहीं सकते, मशरूबात के साथ जो खाने पीने का सामान ज्यादा कर लेते हैं, देखो हिल ही नहीं सकते कुजा उठ के तरावी के लिए मस्जिद में जाए ना, तो इतना पेट भर ले हिल ही ना सके, तो बर्तन ही समेटे नहीं जाते। कहते हैं कि कोई बर्तन भी आके ना समेट दे, कोई हिला दे, अभी चाय की कसर लोगों की बाकी होती है, चाय भी पीनी होती है ना, और तरावी का टाइम सर पर आ जाता है और गुजरने लगता है। तो जब भी कोई बड़ा काम करना है तो उसमें क्या है कि सबसे पहले जिस्म को उसके लिए तैयार करना चाहिए, भूख की मुशक्कत, पानी की मुशक्कत, नींद की कुर्बानी, मेहनत और मुशक्कत की आदत, यानी रत जगा भी हो और साथ ही प्यास की, खाने की लज्जतें जो है ना, जबान जो चटखोरी है इसको भी रोका जाए। तब हम एक बड़ा मिशन जो है वो अदा कर सकते हैं। जैसे अब क्लास में आपने दाखिला लिया है, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, दो पारे आपके माशाल्लाह हो गए हैं, तो अब उसमें अगर हम नई नई रेसिपीज, नई नई डिशेस दस्तरखान को भरते रहे और वीकेंड भी इसी की नजर हो जाए और हर वक्त यही कुछ हम करते रहे, तो फिर वक्त कहाँ से लाएंगे कि कुरान के ऊपर फोकस किया जाए और इस पे मेहनत की जाए और पढ़ा जाए। जिंदगी के 20, 30, 40, 50, 60 इतने साल मिले और यही काम करते रहे, इन सालों में से सिर्फ 2 साल और उसमें से भी हफ्ते के 7 दिनों में से सिर्फ 3 दिन के लिए ये हमने क्लास को ज्वाइन किया, और अगर हमने इस पर मेहनत ना की, इस पर मुशक्कत ना की, तो फिर थोड़े लोग ही जो मुशक्कत करेंगे ना, जो मेहनत करेंगे, थोड़े लोग इससे ज्यादा फायदा उठाएंगे। हर जगह ना थोड़े लोग होते हैं जो फिर फौकियत लेते हैं और गलबा हासिल करते हैं, ज्यादा लोग जो है ना वो कुछ लोग हालात की रो में बह गए, कुछ लोग ये मुश्किल है, मौसम का मसला है, स्नो का मसला है, राइड का मसला है, नींद का मसला है, आराम का वक्त नहीं मिलता, घूम फिर नहीं सकते, वो बातें नहीं है, और इधर उधर की जो भी मसाइल हुए उसी में उसका शिकार हो गए, और कुछ लोग जो के मुस्तकिल मिजाजी से इसको लेकर जो है वो आगे चलते हैं और वही लोग कामयाब होते हैं। तो बात कोई भी हो, कहीं की भी हो, तो असल बात क्या है कि कलील मिनहु, थोड़े लोग होते हैं। इसी तरह रोजा रमजान के महीने सबके लिए आते हैं, लेकिन मुत्तकी कोई कोई बनता है ना। क्लास में दाखला सभी लेते हैं, पूरा कोई कोई करता है, और वैसे जैसे कि करने का हक है। फरमाया फलम्मा जावजा हुआ वल्लज़ीना आमनू माहू क़ालू ला ताक़त लना अल्यौम बिजलूत व जनूदी। फिर जब तालूत और इसके साथी मुसलमान दरिया पार करके आगे बढ़े, यानी तालूत भी और जो इनके साथी थे जो ईमान वाले थे, जब वो आगे बढ़े दरिया को पार करके, वो नहर को पार करके, तो पानी तो पी चुके थे ज्यादातर लोग, पेट भर के पानी पी चुके थे, ठीक है ना। अल्लाह ताला खुद ही कह रहे ना, थोड़े लोग जो थे वो जो बचे। तो अब उन्होंने फिर क्या ऐलान कर दिया कि ला ताकत लना अल्यौम, आज हमें ताकत ही नहीं है, अब हिम्मत ही नहीं है, किस चीज की, बेजालूत व जनूदी, जालूत और इसके लश्करों का मुकाबला करने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि वो दरिया पर भी अपनी बेसब्री का मुजाहरा कर चुके थे और अब यहां पर भी जो है वो पानी पीते ही वो ढेर हो गए, नदी को पार करने की भी जहमत जो थी वो करना उनके लिए बड़ा मुश्किल था, और उठाई भी जहमत की भी नदी को पार करने की, तो उसी पार खड़े खड़े कह दिया, या दूर से या पार करते ही साथियों को कह दिया कि हमारे अंदर बिल्कुल हिम्मत नहीं है, आप क्या बात करते हैं कि जिहाद करें, हिम्मत ही नहीं है कि जालूत और इसके लश्करों का हम जो है ना मुकाबला करें। क्यों? इसलिए कि अब उनके अंदर, उन्होंने उनके अंदर अतात नहीं थी, उनके अंदर मुनाफ़कत थी, क्योंकि कहना मानना चाहिए था ना, अल्लाह की तरफ से आजमाई थी, तो उन्होंने कहना ही नहीं माना। और अब क्या है कि अब एक तरफ तो ये लोग थे इन्होंने ये कहा जिन्होंने पानी पी लिया, दूसरे कौन थे, قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله, वो लोग जो समझते थे कि उन्हें एक दिन अल्लाह से मुलाकात करनी है, उन्होंने कहा कम मिन फियतिन कलीलतिन गलबत फियतन कसीरतम बिइज्निल्लाह। 12 ऐसा हुआ है कि एक कलील गुरु अल्लाह के इज्जत से एक बड़े गुरु पर गालिब आ गया। अब जो है वो बता रहे हैं ईमान लाने वाले लोग, वो जिन्होंने पानी नहीं पिया था, जिन्होंने अल्लाह की और अल्लाह के मुकर्रर करदा जो जानशीन थे, जो बादशाह थे, उसकी अताअत की थी, उन्होंने ऐलान कर दिया कि फतह का इनहिसार जो है वो कसरत पर नहीं है, फौज की कसरत पर नहीं है, ना उसकी किल्लत पर है, बल्कि क्या है कि अज्म और ईमान पर है। कि कितनी दफा ऐसा हुआ है कि एक कलील गुरो, थोड़े लोग जो है वो अल्लाह के इज्जत से बड़े गुरो पर गालिब आए हैं। तो असल चीज क्या है कि ये बात कही किन लोगों ने, ये वो लोग थे जिनके अंदर ईमान था, ये वो लोग थे जिनको उम्मीद थी कि अल्लाह से मुलाकात करनी है, वो आखरत पर भी ईमान रखते थे, खास तौर पर अल्लाह ताला ने इसको जो है वो नुमाया करके बयान किया है कि इतना भी तो अल्लाह ताला कह सकते थे ना कि काल अल्लज़ीना आमनू, बल्कि कहा काल अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाकुल्लाह, कहा उन लोगों ने जिन्हें यकीन था इस बात का कि हम अल्लाह से मुलाकात करने वाले हैं, कि मरना है अल्लाह के पास, जब जाना ही है तो मौत तो आनी ही है, تو جو اللہ پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، جو آخرت پر ایمان لانے والے ہوتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے کہ موت کو وہ زندگی سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے ہیں، کہ مرنا تو ہے ہی، تو کیونکہ ان کو یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں مرنے والے کبھی جو ہے وہ مرتے نہیں ہیں، بلکہ حقیقی زندگی پاتے ہیں، بلکہ وہ اپنی رب کی ملاقات سے مشرف ہوتے ہیں. تو اب ہمت چھوڑنے والوں کو وہ ساتھیوں کو ابھار رہے ہیں کہ یہ جو فلسطین ہیں تم ان سے کیوں مرعوب ہو رہے ہو؟ تو اصل چیز تعداد نہیں ہے، اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کی حمایت ہے، اللہ کی تائید اور نصرت ہے، اور تاریخ ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے. اور اللہ کی تائید حاصل کرنے کے لیے چاہیے کیا؟ یہاں نا بإذن اللہ، اللہ کی تائید، اللہ کی اجازت، تو تھوڑے لوگ بھی فتح پا جاتے ہیں، تو چاہیے کیا؟ واللہ ما الصابرین، ہوں وہ صبر کرنے والے، ان کے اندر جو ہے وہ صبر ہونا چاہیے. اگر ان کے پاس صبر کی دولت ہوگی، صبر و استقامت اور عزم و ہمت، وہ چیز ہے کہ پھر انسان جو ہے وہ بڑے بڑوں پر جو ہے وہ فتح یاب ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں، ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلے پر نکلے، قالوا، تو انہوں نے کہا، کون لوگ؟ جو اللہ سے ملاقات پر ایمان رکھے ہوئے تھے، جو ایمان لانے والے تھے اور جن کو موت کا یقین تھا، وہ کہنے لگے، دعا مانگنے لگے، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الكافرین. انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم پر صبر نازل کر دے، ہم پہ صبر کا فیضان کر دے، ہمیں صبر دے دے. افرغ علینا صبرن، ہمیں صبر پر کا فیضان دے، اور ہمارے قدم جما دے، ثابت قدمی دے ہمیں. اور تیسری بات کیا کہی؟ اور اس کافر گروہ پر ہمیں فتح نصیب کر. تو انہوں نے جو ہے یہ دعا مانگی، کیونکہ نیک لوگوں کی کیا علامت ہوتی ہے؟ کہ وہ اپنی ہمت، اپنے سامانِ جنگ پر بھروسہ نہیں کرتے، بلکہ ساتھ ساتھ عاجزی سے اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں. اور دعا کیا کرتے ہیں؟ ایک طرف صبر، پھر ثابت قدمی، اور اپنی فتح کے لیے دعائیں بھی مانگتے ہیں. تو یہ لشکر جو تھا تو تھوڑا تالوت کا، تالوت علیہ السلام کا، لیکن کیا ہے کہ اس لشکر نے خوب گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کی، ویسی دعائیں جیسے کہ غزوہ بدر کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات جو تھی وہ اگلی صبح بدر کی جنگ ہونے والی تھی، تو آپ رات کو جو تھے وہ اٹھے ہوئے تھے، اور آپ جو تھے، آپ کے اوپر جو چادر تھی نا، آپ ایسی بے خودی کے عالم میں دعا کر رہے تھے کہ وہ چادر گر گر جاتی تھی، کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کہہ رہے تھے کہ اگر آج آپ نے اس چھوٹے سے گروہ کو نہ بچایا، تو پھر تیرا دنیا میں نام لیوا کوئی باقی نہیں رہے گا، تو اس کی مدد کر. ایسی بے خودی کا عالم تھا کہ چادر گر گر جاتی تھی، احساس ہی نہیں تھا. صحابہ جو دیکھتے ہیں نا آپ کی اس کیفیت کو بیان کرتے ہیں کہ بڑے رو رو کر آپ نے جو ہے نا وہ دعائیں مانگی ہیں، اور صحابہ نے بھی مانگی ہیں. تو اب یہ گروہ بھی دعائیں مانگ رہا ہے کہ ایمان بھی ہے، ہمت بھی ہے، جوان مردی بھی ہے، اور پھر دعائیں بھی ہیں. تو ایک اور بات ہمیں کیا پتا چلی؟ کہ دعائیں مانگنی چاہیے، اور دعاؤں میں صبر اور ثابت قدمی کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ کافر قوم پر اللہ جو ہے وہ فتح دے دے، کامیابی دے دے. اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں، فہزموہم بإذن اللہ، آخر کار اللہ کے اذن سے کیا ہوا کہ انہوں نے کافروں کو شکست دے دی. فقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے اسے سلطنت اور حکمت سے نوازا، اور جن جن چیزوں کا چاہا اس کو علم عطا کیا. حضرت داود علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، پھرتیلا مضبوط اور چست بدن تھا، بہت اچھے نشانہ باز بھی تھے، اور جو وحشی جانور ان کے بکریوں کے ریوڑ پر آ کر حملہ آور ہوتے، پتھروں کے ذریعے ہی انہیں مار دیتے تھے، اتنا زبردست نشانہ تھا، پتھر مارتے تھے اور پھر وہ جانور جو تھے یا تو بھاگ جاتے یا وہ مر جاتے. اور اتنے جرأت مند اور اتنے طاقتور कि अगर कोई दरिंदा इनके हाथ पर चढ़ जाता, इनके हत्थे चढ़ जाता, तो इसके निचले जबड़े पर पांव रखकर और ऊपर के जबड़े को इस जोर से खींचते थे कि उसे चीर कर रख देते थे। तो ये दाऊद अलैहिस्सलाम थे। और अब जो है ये ऐन उस वक्त जो है वो आते हैं अपने भाइयों के पास, अपनी बकरियों को चरागाह में छोड़कर, और अपने बाप के हुक्म से कुछ खाने की चीजें अपने भाइयों को देने आते हैं। यहां देखते हैं कि जालूत जो है मुकाबले के लिए चैलेंज दे रहा है, कोई मुकाबले के लिए आगे नहीं बढ़ रहा। ये देखकर इनको बड़ी जोश आता है इनकी गैरत को। तो अब वो क्या करते हैं, इजाजत मांगते हैं कि मुझे इजाजत दी जाए, और फिर जो है मुश्किल से इजाजत मिलती है क्योंकि छोटे भी लगते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि उसको मार कर रख देते हैं, खत्म कर देते हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं वक्त अल्लाह दाऊद जालूत, कि वो जालूत को उन्होंने खत्म कर दिया। और अब यहीं से ही जो है वो इस वाक्य से दाऊद अलैहिस्सलाम जो है इनकी जिंदगी का उरूज शुरू होता है। अब ये बनी इसराइल की तारीख के जो है वो सितारे बन जाते हैं। और अब अल्लाह ताला जो है इनको बनी इसराइल की तारीख का तारा बना देता है। और कहते हैं कि फिर तालूत ने अपनी बेटी भी इनसे ब्याह दी, और आखिरकार फिर यही बनी इसराइल के फरमानरवा मुकरर हुए। यहां पर जो बात बहुत अहम है वो क्या कि शिकस्त तो दीन जो थे जालूत के लश्कर को शिकस्त दी गई, यहां फिर आप देखें बिइज़्निल्लाह अल्लाह की इजाजत से। तो ये चीज बड़ी अहम है कि फतह हो या शिकस्त, ये तादाद की वजह से नहीं होती, बल्कि क्या है कि अल्लाह ही की तरफ से होती है। तो असल एतमाद क्या होना चाहिए, अल्लाह ही पर होना चाहिए इंसान को, ना कि अपने असबाब पर या फिर वसाइल पर हो। फिर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको बादशाही दी, और आप देख लें कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम जो है अल्लाह ताला ने उनको कैसी बादशाही दी कि जिसमें दरवेशी थी, चंगेजी नहीं थी, हाँ ऐसी बादशाही जो अल्लाह की नजरों में पसंदीदा है। बादशाह कौन होता है, वो जमीन में दरअसल अल्लाह का खलीफा होना चाहिए, खिलाफत का दर्जा हो, यानी अल्लाह की हुकूमत को कायम किया जाए, ना कि चंगेजी और सिकंदर आजम और ऐसी कि इंसान जो है वो दुनिया को खत्म करता चला जाए। तो ऐसी उन्होंने बादशाहत की जो अल्लाह को पसंदीदा थी, और जैसे हजरत फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम भी ऐसे ही अच्छे खलीफा थे, फिर हजरत अबूबकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हो, हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो, फिर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, ये सब बादशाह तो थे लेकिन दरवेश बादशाह थे, बादशाही में फकीरी की। और इनकी बादशाही का तख्त जो था वो ऐसा नहीं था कि तख्त और ताज सोने चांदी से था, बल्कि हिकमत से भरा हुआ था। जब हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह की वफात हुई तो एक ईसाई राहिब रो रहा था कि मैंने ऐसा राहिब नहीं देखा, कि दुनिया उसके कदमों पर थी। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के पास कितनी बड़ी दुनिया के वो बादशाह थे, लेकिन ये कि दुनिया उनके कदमों पर थी, लेकिन उसने दुनिया को जो है ना धुतकार दिया। तो यहां पर ये बात बताई जा रही है, आताहुल्लाहुल मुल्का, अल्लाह ने उनको बादशाही दी, वल हिकमता, और हिकमत अता की। तीसरी चीज क्या है, जो चाहा जिन जिन चीजों का चाहा उनको इल्म जो है वो अता कर दिया। तो अब यहां पर जो बात है वो क्या है कि ये अल्लाह ताला का तरीका है कि जब वो किसी बंदे को चुन लेता है तो जो जो कमी होती है उसके अंदर या जो जो जरूरत होती है उस मकाम की, अल्लाह ताला उसको सिखा देता है, उसको बता देता है, क्योंकि ये अल्लाह अल्लाह ताला की सुन्नत है कि वो अपने बंदों की फिर तरबियत करता है, और वो उस मकाम के लिए अपने बंदे को जो है वो तैयार कर देता है। और ये भी हुआ कि फिर अल्लाह ताला ने उनको नबी भी बना दिया, दाऊद अलैहिस्सलाम को जो जो चाहा उसको दे दिया, जो जो चाहा उनको सिखा दिया, यानी नबी भी बना दिया। और आगे भी हम इनके बारे में फिर पढ़ेंगे। फिर आगे अल्लाह ताला एक अहम जो अपनी सुन्नत है जमीन का इंतजाम बरकरार रखने के लिए अपना एक ज़ाब्ता है उसको बयान कर रहे हैं, वलौला दफ़ुल्लाहि नासा बादहुम बिबादिल लफसदतिल अर्दु वलकिनल्लाहा ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन, कि अगर इसी तरह अल्लाह इंसानों के एक ग्रोह को दूसरे ग्रोह के जरिए हटाता न रहता तो जमीन का निजाम बिगड़ जाता। لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے. اور اللہ کا فضل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے بتا رہے ہیں کہ زمین کے انتظام کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ضابطہ بنا رکھا ہے. اور وہ کیا ہے کہ وہ انسانوں کے مختلف گروہوں کو ایک حد خاص تک زمین میں طاقت یا غلبہ حاصل کرنے دیتا ہے, اور جب وہ کوئی گروہ جو ہے اس حد سے آگے بڑھتا ہے تو کسی دوسرے گروہ کے ذریعے اس کے زور کو توڑ دیتا ہے. اور اگر کہیں ایسا ہوتا کہ ایک قوم اور ایک ہی پارٹی کا اقتدار زمین میں ہمیشہ قائم رہتا تو پھر کیا ہوتا کہ پھر زمین پر قہر ہوتا, پھر قہر لازوال بن جاتا. تو اللہ تعالیٰ یہ پسند نہیں کرتے کہ اس کی زمین میں فساد عظیم جو ہے وہ پیدا ہو جائے. تو جب بھی کسی ملک میں, کسی بستی میں, کسی گاؤں میں, کسی گھر میں جو ہے وہ ظلم اور تشدد انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ جو زور والا ہوتا ہے اس کے زور کو توڑ دیتے ہیں. کوئی پھر ہر فرعون کے لیے ایک اور فرعون, ہر فرعون کے لیے ایک موسیٰ پیدا کر دیتے ہیں, وہ فرعون کتنا ہی بڑا اور مضبوط جو ہے وہ کیوں نہ ہو. تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ دنیا کے لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے. اور حقیقت ہے یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اپنی زمین کو فتنہ اور فساد سے پاک کرتے رہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کی زمین پر نیکی اور تقویٰ کے آثار قائم ہوں, اور اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ کی زمین پر نیکی اور تقویٰ کے آثار قائم نہ ہوتے اور وہ نیکی اور تقویٰ سے خالی رہ جاتی. اللہ تعالیٰ اسی بات کو سورت حج میں بھی فرماتے ہیں آیت 40 میں کہ اگر اللہ ایک گروہ کو دوسرے سے دفع نہ کرتا رہتا تو سومے اور گرجے اور عبادت خانے اور مسجدیں جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر ہوتا ہے سب ڈھائے جا چکے ہوتے. تو یہ ہے کہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا اس میں منشا. اور اس میں جو دوسرے پارے کی آخری آیت ہے 252, اس میں فرمایا تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. تو یہ جو آیت ہے یہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف التفات کیا گیا ہے اور آپ کی جو رسالت ہے اس کا اقرار کیا گیا ہے. اللہ تعالی جو ہے وہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کی آیات ہیں, یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. کیا اللہ کی نشانیاں ہیں؟ یہاں پہ آیات اللہ سے مراد کیا ہے؟ ایک تو وہ تمام معجزات جو بنی اسرائیل کو پیش آئے کہ وہ وبا سے ڈر کر گھر بار چھوڑ کر ہزاروں لوگ جو ہے وہ موت سے ڈر کر بھاگے اور اللہ تعالی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کو زندہ بھی کر دیا اور جن کو موت دینی تھی ان کو موت بھی دے دی. پھر آگے داؤد علیہ السلام کا مقابلہ کرنا جالوت کا اور جابر بادشاہ کو مار ڈالنا. تو یہ کیا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہی تو تھی کہ ایک چھوٹا سا گروہ, قلیل گروہ بڑے گروہ پر غالب آ گیا. اور ایک گمنام چرواہا, جنگل میں رہنے والا, پہاڑوں پر رہنے والا, بکریوں کو چرانے والا, اللہ نے اس کو بادشاہی اور نبوت سے سرفراز کر دیا. کہاں بنی اسرائیل کے سردار چاہتے تھے ان کو بنایا جائے تو تالوت کو بنایا, اور کہاں ایک گمنام چرواہے کو اٹھا کر وقت کا بادشاہ بنا دیا اور نبی بنا دیا. تو یہ سارے واقعات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نتلوہا علیک بالحق, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو جو ہے وہ صحیح صحیح بیان کر رہے ہیں, ہم سنا رہے ہیں. آپ کو تو نہیں پتا تھا نا, اس کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم سنا رہے ہیں اور آپ کو سنا رہے ہیں تو پھر اللہ کے نبی تو نبی ہیں, رسول ہیں, وہ سچے ہیں. پرانے زمانے کے حالات کا اور معجزات کا ٹھیک ٹھیک جو ہے وہ پیارے رسول کو بتانا اور آپ کا پھر لوگوں کو سنانا, یہ آپ کی رسالت کی بہت بڑی دلیل ہے. کیونکہ وحی الہی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی ایسا ذریعہ نہیں کہ جس کی بنا پر آپ صحیح صحیح حالات جان سکیں اور لوگوں کو بتا سکیں. تو یہاں پر جو بات بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہی چیز آپ کی رسالت کے ثبوت کی دلیل کے لیے کافی ہے کہ ہم آپ کو پرانے واقعات بتا رہے ہیں, ورنہ آپ کے پاس واقعات کے جاننے کے لیے کوئی ذریعہ نہیں تھا कोई ऐसा तरीका नहीं था कि आपको पता चलता। तो एक तरफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली भी दी जा रही है और दूसरी तरफ जो है वो आपकी रिसालत का असबात भी किया जा रहा है, इकरार किया जा रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं व इन्नक लमिनल मुरसलीन, बिला शुबा आप उन लोगों में से हैं जिन्हें रसूल बनाकर मबूस किया गया है, यानी आपका रुतबा बहुत अजीम है। दुनिया अगर आपको नहीं भी मानती और आपका एक इनकार करती है, इकरार नहीं करती, तो गम की फिक्र की कोई बात नहीं। अल्लाह ताला इस बात का ऐलान कर रहे हैं कि जो है वो आप रसूलों में से हैं। तो ये पूरा जो वाकया है जो पढ़ा है, इससे अमल के लिए क्या असूल मिलता है? इसमें एक बात तो ये पता चलती है कि मौत से डरना नहीं चाहिए। दूसरी बात ये पता चलती है कि शुक्रगुजारी इख्तियार करनी चाहिए, और खास तौर पे औरतों के अंदर अगर इसकी कमी है तो हमें अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए। फिर तीसरी बात ये पता चलती है कि माल की कुर्बानी करनी चाहिए, अल्लाह उसको कई गुना बढ़ा चढ़ा कर देगा दुनिया में भी और आखिरत में भी। हमें जाता नजर आता है, आता नजर नहीं आता। फिर चौथी बात क्या पता चलती है कि अल्लाह के रास्ते में जब निकलने के लिए कहा जाए तो निकलना चाहिए। और पांचवी बात ये पता चलती है कि अगर कभी इज्तमाही जिंदगी में, जैसे क्लास में, खानदान में, आप कहीं किसी मस्जिद में हैं, किसी तहरीक में हैं, तो आपके ऊपर किसी और को अहमियत दे दी जाए, फौकियत दे दी जाए, तो नाराज नहीं होना चाहिए कि मुझे क्यों नहीं इंचार्ज बनाया गया, दूसरे को क्यों बना दिया गया है। ये जो है वो आपकी ये जिम्मेदारी नहीं है कि आप अपने आप को प्रमोट करें, यानी समाइयत के लोग मिलकर अगर किसी को भी बनाना चाहते हैं तो बेनियाजी होनी चाहिए। आपका काम तो क्या है कि काम करना, वो अगली सफ में खड़ी होकर करें या पिछली सफ में खड़ी होकर करें। सिपाही का काम तो लड़ना होता है, आगे खड़ा कर दिया जाए या पीछे, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और उसको प्रूफ करना चाहिए कर। और एक और अहम बात जो पता चलती है कि जो भी छोटे मोटे वाकयात होते हैं वो आजमाइश होती है। जो भी जैसे क्लास के, आप कुरान की क्लास में आप ज्वाइन हुए हैं, इसको अटेंड कर रहे हैं, इसी अभी इस दौरान किसी को जो अच्छी जॉब की ऑफर हो जाना, राइट, कि जैसे मैं आपकी क्लास में एक स्टूडेंट को जानती हूँ, माशाल्लाह बस से आती है, कभी 2 घंटे कभी 1 घंटा, और हर दफा और कभी उनको कोई राइड भी देता है। तो जब राइड कोई भी उनको देता है तो वो कहती है कि मेरे बस के अगर $30 लगते हैं ना तो ला के हाथ में दे देती है, कहती है आप इसको अल्लाह के रास्ते में दे देना, मुझे वो सहूलत मिल गई कि मुझे किसी ने राइड दे दी। लेकिन ये अगर राइड ना भी मिलती तो ये पैसे मैं बस को देती ना, तो मैं क्यों ना इसको फिर अल्लाह के रास्ते में दे दूं। तो अपनी अपनी सोच का अंदाज होता है कि इंसान जो है वो छोटी छोटी परेशानियों और रुकावटों के जरिए जो है वो ऐसा नहीं होता कि ढह जाए, और ये दिन बहार के दिन ये गुजर ही जाएंगे ना। और जब हम मुशक्कत, भूख प्यास, सबर, रत जगा और भी तकलीफें बर्दाश्त करेंगे तो वो वक्ती होंगी, अजर हमेशा के लिए लिखा जाएगा। और हम अगर इसको छोड़ देंगे और दुनिया के फायदे, नफ्स की तरगीबात जो है उसके सामने ढह जाएंगे तो क्या होगा कि वो लज्जत वक्ती होगी लेकिन महरूमी हमेशा के लिए फिर लिख ली जाएगी ना। तो ये अहम बात है कि सब्र करना, शुक्र करना, अल्लाह से मुलाकात का यकीन करना, और फिर इज्जत देना, हिकमत देना और इल्म देना, और जो कुछ ये सब कुछ जो है ये अल्लाह की देन है, जिसको चाहे जो है वो अता करे। अल्लाह हम सबको बेहतरीन मुसलमान बनाए और अमल की तौफीक अता करे। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाह अज़ीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا واسعا وشفاء من كل داء وشفاء من كل داء। اللہ تعالیٰ ہم سب کے سب گناہوں کو بھی معاف کرے اور ہمیں بہترین مسلمان جو ہے وہ بنائے۔ اور جس طرح ایمان لانے والوں نے ایمان کی بہتری کے لیے اور ایمان کی مضبوطی کے لیے دنیا کی زندگی میں بہت سی قربانیاں دی لیکن اپنے ایمان اور کردار پر آنچ نہ آنے دی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اپنے ایمان اور کردار کو جو ہے نا بچانے والا اور مضبوط کرنے والا بنائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین ثم آمین۔